रात के 10 बज रहे थे और रिवांश गाड़ी के अंदर बैठा उस व्यक्ति के घर जा रहा था। उन लोगों को घूमते हुए लगभग 3 घंटे हो गए थे, उसके बावजूद वो अब तक उस आदमी के घर तक नहीं पहुंचे थे। हम कब तक उनके घर तक पहुंचेंगे? काफी देर से तुम इधर से उधर घुमा रहे हो, अब गाड़ी यहां जंगल के आगे लाकर खड़ी कर दी? रिवांश ने गुस्से में ड्राइवर की तरफ देखा। ड्राइविंग सीट पर ड्राइवर के बजाय एक मूर्ति पड़ी थी। वो हैरानी से उसकी तरफ देखे जा रहा था। अगले ही पल रिवांश ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और गाड़ी को 4 टुकड़ों में बदल दिया। वो गाड़ी के बाहर था और वो मूर्तियां उसके ठीक सामने खड़ी थी। क्या है ये सब, कौन हो तुम लोग? रिवांश गुस्से में गुर्राया। सामने से कोई जवाब नहीं आया तो उसने गुस्से में एक मूर्ति को उठाया और उसे फेंक दिया। जैसे ही उसने उस मूर्ति को छुआ, एक काला धुआं उसके शरीर में प्रविष्ट कर गया। वो मूर्तियां देखने में पत्थर की नजर आ रही थीं, लेकिन इतनी जोर से फेंके जाने के बावजूद उन पर एक खरोच भी नहीं आई थी। उन्हें देखकर रिवांश समझ चुका था कि जरूर इन मूर्तियों के साथ कुछ गड़बड़ है। हमें नहीं पता कि ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, लेकिन तुम्हें नहीं पता तुमने किसके सामने सिर उठाने की जरूरत की है। हम कोई आम इंसान नहीं है जो कोई भी हमारे साथ यूं खेल खेल लेगा। हम पिशाचों में सबसे शक्तिशाली राजकुमार रिवांश है। हमारे सामने किसी की कोई औकात नहीं है। एक पल नहीं लगेगा हमें इस धरती को खत्म करने में। तुम तो बस कुछ पुरानी पत्थर की मूर्तियां हो। रिवांश ने नीचे गिरी मूर्ति को पैर से ठोकर मारी और वहां से जंगल की तरफ चला गया। नीचे पड़ी मूर्ति मुस्कुरा रही थी। उसके बाद उसकी आंखें बंद हो गईं। उस पूरे दृश्य को देखकर नर्क के सिंहासन पर विराजमान बुराई का देव अपने हाथ में वो दंड उठाकर खड़ा हुआ और जोर जोर से अपनी शैतानी हंसी हंसने लगा। अहंकार की मूर्ति ने अपना कमाल दिखा ही दिया। मूर्ति को छूने भर से राजकुमार रिवांश के अंदर अहंकार का पैदा हो गया। ये तो बस शुरुआत है। एक वक्त ऐसा आएगा जब उनके कण कण में मूर्तियों के सभी अवगुण विराजमान होंगे। बस कुछ दिन शेष रहे हैं, पाताल में उत्तराधिकारी चुनने के जश्न की तैयारियां की जाएं। पाताल में शैतान ने हंसते हुए कहा और उसकी आवाज पूरे पाताल में गूंजने लगी। अगली सुबह राजवीर सिंह, आकांक्षा, जानहवी और त्रिशान के साथ वापस शिमला जाने के लिए निकल पड़े। इस बार उनके साथ राजपुरोहित जी भी थे। मैंने राजपुरोहित जी से कह तो दिया कि मैं उन्हें रिवान से मिला दूंगी, लेकिन कहीं वो मुझसे फिर से नाराज नहीं हो जाए। त्रिशान उससे मिला था तो वो गुस्सा हो गया था कि मुझे उसके बारे में सबको नहीं बताना चाहिए, ऊपर से राजपुरोहित जी। गाड़ी में आकांक्षा अपने ख्यालों में खोई हुई थी। राजपुरोहित जी आकांक्षा की चिंता को अच्छे से समझ रहे थे। उन्होंने उसे तसल्ली देने के लिए कहा, घबराओ मत, सब अच्छा ही होगा। आकांक्षा ने उनकी तरफ देखा। राजवीर जी उन सबके सच से अनजान थे, इसलिए उन्हें लगा कि आकांक्षा राजपुरोहित जी के आने की वजह से परेशान है। हाँ अक्षु, राजपुरोहित जी सही कह रहे हैं। इन्होंने पहले भी हमारी बहुत मदद की थी। तुम डरो मत, ये हमारे साथ इसलिए जा रहे हैं ताकि एक बार हमारे घर को चेक कर सके कि वहां कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है, राजवीर जी ने कार चलाते हुए कहा। वो लोग आपस में बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जाह्नवी गाड़ी में सो रही थी तो वहीं त्रिशान की नज़र उसी पर टिकी थी। जैसे ही वो लोग जंगल के पास पहुंचे, त्रिशान की नज़र जंगल के बाहर पड़ी उन मूर्तियों पर गई। ये ने यहाँ किसी ने नहीं रखा होगा, ये देखने में इतनी अजीब क्यों लग रही हैं? दादू, उन मूर्तियों को देखिए ना एक बार, त्रिशान के कहते ही राजवीर जी ने गाड़ी रोक दी। जाह्नवी को छोड़कर बाकी वो सब उन मूर्तियों को देखने के लिए बाहर निकले। 4 मूर्तियां एकदम सीधी एक लाइन में रखी हुई थी तो एक मूर्ति उनसे कुछ दूरी पर जमीन पर पड़ी हुई थी। ये तो एंटीक लग रही हैं। लगता है किसी ने इन्हें समगल करके उन्हें यहाँ छुपाने के लिए रख दिया होगा। वैसे भी इस तरफ ज्यादा लोग नहीं आते, आकांक्षा ने मूर्तियों को देखकर अंदाजा लगाया। वो उन्हें छूने के लिए आगे बढ़ रही थी कि राजपुरोहित जी ने उसका हाथ पकड़कर पीछे खींचा और कहा, ऐसे राह पड़ी अनजान चीजों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, ये कोई आम मूर्तियां नहीं लग रही हैं। त्रिशान उन मूर्तियों के इर्द गिर्द घूमकर चारों तरफ से देख रहा था। तुम्हारा इंस्पेक्शन हो गया हो तो हम चले यहाँ से, राजवीर जी ने त्रिशान की तरफ देखकर कहा। त्रिशान उनकी बात का कोई जवाब दे पाता उससे पहले राजपुरोहित जी ने उसे वहीं रुकने का इशारा किया। आप लोग जाइए, मैं बाद में आ जाऊंगा, मुझे इस तरह की एंटीक चीजें काफी पसंद आती हैं, और वैसे भी आप लोग अपने घर जा रहे हैं, मैं यहाँ से अपने घर चले जाऊंगा, वो यहाँ से ज्यादा दूरी पर नहीं है, त्रिशान ने जवाब दिया। हाँ ठीक है, लेकिन याद से इन मूर्तियों को हाथ मत लगाना, जाते वक्त राजपुरोहित जी ने उसे चेतावनी दी। उसने पलके झुकाकर उनकी बात पर हामी भरी। राजवीर जी राजपुरोहित जी और आकांक्षा के साथ जाकर वापस गाड़ी में बैठ गए और घर की तरफ चले गए। उनके वहां से जाते ही त्रिशान उन मूर्तियों को गौर से देख रहा था। उन्हें देखते वक्त उसकी काली आंखें हरे रंग में बदल गईं। यहां रखी ये मूर्तियां आम तो बिल्कुल नहीं हो सकती, फिर इनमें क्या खास बात हो सकती है? दादू ने इन्हें छूने से मना किया है, बोलते हुए त्रिशान ने इधर उधर देखा तो उसकी नजर जंगल के रास्ते पर गई। ये तो वही जंगल है जहाँ अपना मिस्टर वैम्पायर रहता है। ये मूर्तियाँ यहाँ रखी हुई हैं। इसका मतलब उसने इन मूर्तियों को जरूर देखा होगा। ऐसा करता हूँ, उसी से जाकर पूछ लेता हूँ। त्रिशान उन मूर्तियों को वहीं छोड़कर जंगल की तरफ बढ़ गया। काफी दूर चलने के बाद उसे सामने रिवांज नजर आया। वो उसे देखकर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ा और कहा, और क्या हाल है मिस्टर वैम्पायर, एंजल के बिना मन लग गया तुम्हारा? बोलते हुए त्रिशान ने रिवांज के कंधे पर हाथ रखा। अगली ही पल रिवांज ने उसका हाथ पकड़कर उसे हवा में घुमाते हुए दूर झटक दिया। नीचे गिरते ही त्रिशान इंसान से भेड़िए के रूप में आ चुका था। उसे भेड़िए के रूप में देखकर रिवांज ने अपना विशाल रूप धारण किया। वो गुस्से से घूर रहा था। तुम भेड़ियों की हमारे आगे कोई औकात नहीं है। हम सदियों से दुश्मन हैं, थे और रहेंगे। तुमने हमारे घर, हमारे इस जंगल में आकर सबसे बड़ी गलती की है। अब तुम जिंदा नहीं जा पाओगे। बोलते हुए रिवांज ने पास का पेड़ उखाड़कर उससे त्रिशान पर हमला बोल दिया। त्रिशान अपनी पूरी ताकत लगाकर खड़ा हुआ और अपने ऊपर से वो पेड़ हटाया। उसने अपना इंसानी रूप धारण किया और कहा, तुम्हें क्या हो गया है रिवांज? अपने सच को पहचानो, तुम ये नहीं हो, होश में आओ। हम क्या हैं ये तुम्हें हमें बताने की जरूरत नहीं है। त्रिशान आगे कुछ बोल पाता उससे पहले रिवांज उसके ऊपर छपट पड़ा और उसके लंबे दांत त्रिशान के गले पर थे, जिनसे अगले ही पल वो उसकी जान लेने वाला था। क्रमशः कीप सपोर्टिंग।